आगे रुको नंबर 2 है, 23 से 32, हजरत नूह की कौम की कहानी, जिसका पैगाम क्या है, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अल्लाह कैसे बचाता है आइए देखते हैं। वलकद अरसलना नूहन इला कौमिही फकाल या कौमे बुदुल्लाह। और हजरत नूह के पैगाम पे भी जरा नजर रखिएगा। और यकीनन हमने नूह अलैहिस्सलाम को इनकी कौम की तरफ रसूल बनाकर भेजा, उसने कहा कि मेरी कौम के लोगों अल्लाह की इबादत करो और इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, क्या तुम इससे नहीं डरते। उसकी कौम के काफिर सरदारों ने साफ कह दिया कि ये तो तुम जैसा ही इंसान है, ये तुम पर फजीलत और बड़ाई हासिल करना चाहता है, अगर अल्लाह ही को मंजूर होता तो किसी फरिश्ते को उतारना, हमने तो इसे अपने अगले बाप दादाओं के जमाने में सुना ही नहीं। वही कहानी कि हमारे बाप दादा नहीं करते थे तो हम कैसे करें। यकीनन इस शख्स को जुनून है, बस तुम इसे एक वक्त मुकर्रर तक ढील दो। नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ मेरे रब, इनको झुठलाने पर तू मेरी मदद कर। आइए हम भी ये दुआ मांगे, रब इंसुरनी बिमा कज़्ज़बून, ऐ मेरे रब इनको झुठलाने पर तू मेरी मदद कर। हम क्यों मांगे ये दुआ, बहुत सारे लोग हमें भी झुठलाएंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा कि ये क्या कर रहे हैं। याद रखिए एक ख्वाहिश परस्ती होती है और एक खुदा परस्ती होती है। जब कुरान का सच्चा पैगाम जाता है ना, तो कुछ लोग उस पर ऑफेंड होते हैं। तो अभी से दुआ कर लें कि अगर मेरी मुखालफत मेरे घर वाले करें, मेरे ससुराल वाले करें, मेरी गली मोहल्ले वाले करें, मेरी दोस्तें करें, तो अल्लाह तू मेरी मदद करना। बातों का खौफ हम में से बहुत सारों को अल्लाह की बात मानने से रोक लेता है। ये दुआएं मांगिए ताकि अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए। ये है नसरु मिनल्लाह व फतहुन करीब। फिर क्या हुआ इस दुआ का नतीजा, तो हमने इनकी तरफ वही भेजी कि तू हमारी आंखों के सामने हमारी वही के मुताबिक एक कश्ती बना, जब हमारा हुक्म आ जाए और तनूल उबल पड़े तो तू हर किस्म का एक एक जोड़ा इसमें रख ले और अपने अहल को भी, मगर इनमें से जिनके बारे में हमारी बात पहले से गुजर चुकी है यानी वो नहीं बचाए जाएंगे। खबरदार जिन लोगों ने जुल्म किया इनके बारे में मुझसे कुछ कलाम न करना, वो तो सब डुबोए जाएंगे। जब तू और तेरे साथी कश्ती में बाइत्मीनान बैठ जाएं, तो कहना सब तारीफ अल्लाह ताला के लिए ही है जिसने हमें जालिम लोगों से निजात अता फरमाई। और कहना ऐ मेरे रब मुझे बाबरकत उतारना उतार, और तू ही बेहतर है उतारने वालों में। ये भी दुआ बहुत प्यारी है, कहीं भी जाए ये पढ़ लें, कहीं जाए एंट्री पे एग्जिट पे, बेटी ससुराल में जा रही है सफर पे। अब दुआओं का तो एक खास वक्त होता है ना, लेकिन आपका और रब का ताल्लुक है ना, जब ये दुआएं आती हैं खुद ब खुद पढ़ते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती से उतरते वक्त अगर ये पढ़ी है तो आप इसको देखिए कैसे प्यारी दुआ है। रब्बी अनजिलनी मुनजल मुबारक वंत खैरुल मुनजिलीन। और कहीं जाने का इरादा है, मैं जाऊं कि ना जाऊं, मैं उधर मूव हो जाऊं कि ना हो जाऊं, मैं वहां पैगाम देने जाऊं ना दूं, अल्लाह वहां जाने में कोई बरकत है। ये बंदे मोमिन का किसी कानून के तहत नहीं है, ये उसका दिन रात का अल्लाह ताला के साथ राबता होता है। तो कोई काम करने से पहले अल्लाह से दुआ मांग लिया करे। क्या हुआ, यकीनन इसमें बड़ी निशानियां हैं, हम बेशक आजमाइश करने वाले हैं। फिर इसके बाद हमने एक और उम्मत पैदा की, फिर इनमें खुद इन्हीं में से रसूल भी भेजा कि तुम सब अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, तुम क्यों नहीं डरते। ये है बेबाक हक। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में इनकलाब आया, आया लाखों में से सिर्फ 80 के करीब लोग बचे क्योंकि वो हक वाले थे। तो क्या फिर हजरत नूह का ये फैसला कि वो कश्ती में बैठकर इनको लेकर दूसरी जगह चले जाएं गलत था? नहीं, नसरु मिन अल्लाह व फतहुन करीब का वादा उनके साथ पूरा हुआ। टूटी कश्ती में अल्लाह ने उनको बचा लिया और ऊंचे पहाड़ पे चढ़ा बेटा डूब गया। तो लिखिए इनकलाब लेने के लिए, ये इनकलाब को लाने और बुलाने के लिए नूह अलैहिस्सलाम जैसा अज़म और हौसला ज़रूरी है, अल्लाह हमें अता फरमाए। फेथ इन एक्शन क्या है कि हक को कबूल करने में किसी तासुब का शिकार नहीं होना। आगे जी रुकू नंबर 3, 33 से 50, जालिम कौम का बुरा अंजाम। पिछले अंबिया कराम के किस्सों में हमारे लिए यही नसीहत की बातें हैं। वकाल अल मलअ मिन कौमिही अल्लज़ीना कफरू वकज़्ज़बू बिलिक़ाइल आखिरा। ये मलअ कौन है, इलीट इन्फ्लुएंशियल बड़े लोग जिनको हमारी जुबान में कहते हैं। और सरदारा ने कौम ने जवाब दिया जो कुफर करते थे और आखरत की मुलाकात को झुठलाते थे, और हमने इन्हें दुनियावी जिंदगी में खुशहाल कर रखा था कि तो तुम जैसा इंसान है, तुम्हारी ही खुराक ये भी खाता है और तुम्हारे पीने का पानी ये भी पीता है। अगर तुमने अपने जैसे ही इंसान की ताबेदारी कर ली तो बेशक तुम सख्त खिसारे वाले हो। नोट कर लें, लोग दीनदारों को कोई अजनबी और कोई अचुम्बा देखना चाहते हैं। कहते थे ये क्या, ये तुम्हारे जैसे हैं। देखिए, लोगों को दीन से रोकने लिए ये भी बहुत बड़ी चीज है, तारीख में भी थी और आज भी है। और वो कह के उनको मुआशरे से एक अलग चीज बना के दिखाओ, शख्सियत परस्ती और ये और वो, उनका पल्लू थामो, ये तो ऐसे हैं। अभी मार्फत का टॉपिक हो रहा है तो मेरी आदत है कि जब भी मैंने कोई टॉपिक शुरू करना होता है मैं उसको बहुत वाइडली देखती हूँ, इधर से उधर उधर से इधर। मेरे सामने एक टॉपिक आया, मैंने कहा देखूँ जरा ये ब्रदर क्या कह रहे हैं। आप यकीन करें, जो सारी बात का नतीजा था, अल्लाह रहम करे, अल्लाह उनको भी हिदायत दे, वो जो भी हैं जिस तरह के भी हैं, और उन्होंने कहा कि पीर को देख लेना खुदा को देखने के बराबर होता है, ये है मार्फत। नाउज़ु बिल्ला, यानी अल्लाह को देख लिया या अपने बुजुर्ग को देख लिया, एक बराबर है। सारी शख्सियत परस्ती, सारा शिर्क का गढ़। मैंने उसको फौरन बंद कर दिया, दुआ कर दी कि अल्लाह ताला इनका दिल खोल दे। लेकिन याद रखिएगा, ये जो बात है ना कि वही खाते हैं, वही पहनते हैं, ये उन्हीं गाड़ियों में फिरते हैं, ये वही है, ये वो है, ये है वो सोच जो आज इस्लाम के साथ लोगों की। सौतेला बच्चा इस्लाम को खुश नहीं देख सकते, इस्लाम वालों को खुशहाल देखना, लोग कहते हैं लोग ये तो आप मौजें कर रहे हैं, मस्तियां कर रहे हैं, आप इन मुल्कों में रह रहे हैं, आप इन गाड़ियों में बैठते हैं, आप ये कपड़े पहनते हैं। अल्लाह के बंदो, आखिरत के मुकाबले में ये चीथड़े और आखिरत के मुकाबले में ये गाड़ियां तो ऐसे हैं जैसे खटारे फॉक्सी वैगने हैं। वही इमाम हजर अस्कलानी का वो एतमाद याद कीजिए कि एक बड़े ही होमलेस किस्म के काफिर ने उनको रोक के कहा कि तुम्हारे नबी ने गलत कहा। उन्होंने कहा कि दुनिया मोमिन के लिए कैदखाना और काफिर के लिए जन्नत है। तो मैं तो इसे उलट देख रहा हूँ, तुम मुसलमान भी हो और तुम्हारे पास इतनी शान है, तुम्हारी सवारी अच्छी, तुम्हारे कपड़े अच्छे, तुम्हारा ये, और देखो मैं काफिर और मैं रुल रहा हूँ। तो अब हम होते कहते हो खूब वाकई, कहते तो ये सही है, इंटेलेक्चुअली हम फॉरन दब जाते हैं। उन्होंने कहा मेरे भाई, मेरे नबी ने सही कहा है, क्यों ये जो मेरी चीजें देख के तुझे बड़ा मान आ रहा है ना, ये क्या चीज है? तो ये जब जन्नत की चीजें मुझे मिलती है ना, उसके आगे ये कैदी के कपड़े हैं, मुसब्बिह नुमैर कुछ रुमाल जन्नत में मिलने हैं, वो इन रेशम के रुमालों से खूबसूरत है जिनको देखकर है मेरे साथियों तुम खुश हो रहे हो। ये अल्लाह के नबी की बातें थी, एक जंग में माले गनीमत में रेशम के रुमाल आगे बादशाह के वक्त के, तो सब आके देख रहे कितना प्यारा है, कितना अच्छा है, कितना है। तो नबी ने जरा देखा ना कि आप मेरे साथियों की रगबत दुनिया पे जा रही, फौरन जाके कहा जन्नत में जो मिलना है मुसब बिन उमैर को वो इससे बहुत प्यारा है। यानी फौरन चेंज करते हैं इस परसेप्शन को, ये यहाँ नहीं वहां लेना। और फरमाया कि जो तू अगर कुफर पे मर गया तो तेरे साथ वहां जाकर होना है ना, उसके मुकाबले में तेरी दुनिया की जिंदगी ऐसी होनी है जैसे किसी बाग में फिरने वाले की जिंदगी है। अल्लाह अकबर कबीरा। चलिए, नबियों ने तो ये बातें सुन ली, आगे और भी बातें सुनिए। एक एतराज तो ये झड़ा, दूसरा क्या ये तुमसे इस बात का वादा करता है जब तुम मरकर सिर्फ खाक और हड्डी रह जाओगे तो तुम फिर जिंदा किए जाओगे? नहीं, दूर और बहुत दूर है। अरबी में देखे ना, हई हाता लिमा तू अदू, दूर है दूर है जिसका तुम वादा दिए जाते हो। जिंदगी तो सिर्फ दुनिया की जिंदगी है, हम मरते जीते रहते हैं, और ये नहीं कि हम फिर उठाए जाएंगे। ये है आज का यू लो, यू लिव ओनली वंस। उस दौर में भी लोग कहते थे अभी बड़ी दूर है, अरे देखा जाएगा, अरे देखेंगे। आज जब किसी को भी कह कहते हैं अरे छोड़ो ना, क्यों डराते हो, अभी देखेंगे, अभी मैं जिंदा हूँ, अभी तो मैंने बड़ी मस्ती करनी, अभी मेरे बड़े वक्त हैं। ये ही जुमला था उस वक्त उनका भी, जो आज जुबान हाल से कई लोग दिखाते हैं कि मौज करो, मस्ती करो, इधर ही जीना है। यू लिव वंस, बार बार थोड़ी दुनिया में आना है, नहीं बार बार तो नहीं आना, लेकिन एक और बार तो आना है ना। तीसरा इल्जाम देखिए नबियों पे, ये तो बस ऐसा शख्स है जिसने अल्लाह पर झूठ बांध लिया है, हम तो इस पर ईमान लाने वाले ही नहीं। नबी ने दुआ की, परवरदिगार इनके झुटलाने पर तू मेरी मदद कर। जवाब मिला कि ये तो बहुत ही जल्द अपने किए पर पछताने लगेंगे। क्या महसूस हो रहा है इसको पढ़कर, कितनी बातें सुनी। इनकलाब इस तरह से आता है, बीच रस्ते की चीजों को देखते जाते हैं, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले लोगों को जहर लगते हैं, लोग उनके मुंह आते हैं, जिसको आप कहते हैं मुंह मारी करते हैं ना, यही बात दिख रही है। और अब देखिए इनकलाब आने लगा है, बिलाखर अदल के तकाजे के मुताबिक, ये भी आपके बारे में है ना, अदल और हया। अल्लाह कभी किसी पे जुल्म नहीं करता, याद रखिएगा। इमाम इब्ने तैमिया कहा करते थे कि कोई हुकूमत कुफर पे कायम रह सकती है लेकिन जुल्म पे नहीं रह सकती। आज दुनिया के इन वेस्टर्न कंट्रीज में जो आपको सुकून दिख रहा है ना, वो इसलिए कि कम अज कम दुनियावी तौर पर तो अदल है ना, गले में केले तो नहीं गरीब खाते और अमीर बड़े बड़े तो नहीं खाते ना, या अमीर गरीब एक ही चीज खाता है, ये अदल पे चल रही है। और जहां ये डंडी मार रहे हैं अल्लाह इनको भी पकड़ रहा है। हर चीज को देखें तो क्या कहा, अदल के तकाजे के मुताबिक इन्हें चीख ने पकड़ लिया और हमने इन्हें कूड़ा करकट कर डाला, बस जालिमों के लिए दूरी हो। किससे? अल्लाह की रहमत से। इनके बाद हमने और भी बहुत सी उम्मतें पैदा की, ना तो कोई उम्मत अपने वक्त मुकर्रर से आगे बढ़ी और ना पीछे। फिर हमने लगातार रसूल भेजे, जब जब जिस उम्मत के पास इसका रसूल आया इसने झुटलाया, बस हमने एक को दूसरे के पीछे लगा दिया और इन्हें अफसाना बना दिया। इन लोगों को दूरी है जो ईमान कबूल नहीं करते। फिर हमने मूसा अलैहि सलाम को और इसके भाई हारून अलैहि सलाम को अपनी आयतों और खुली दलील के साथ भेजा फिरौन और उसके लश्करों की तरफ, बस उन्होंने तकब्बुर किया और थे ही वो सरकश लोग। कहने लगे, अब जरा फिरौन की भी बातें सुनिएगा, यानी वो कहते हैं ना, जितने मुंह उतनी बातें। हर नबी को अपने अपने दौर के फरायना से अजीबो गरीब बातें सुनने को मिली। क्या कहने लगे? कहने लगे, क्या हम अपने जैसे दो शख्सों पर ईमान ले आए? इशारा है मूसा और हारून की तरफ, हालांकि खुद इनकी कौम भी हमारे मातहत है। बस उन्होंने दोनों को झुटलाया, आखिर वो भी हलाक शुदा लोगों में मिल गए। हमने मूसा अलैहि सलाम को किताब भी दी कि लोग राह रास पर आ जाए। ये था मूसा के दौर का इनकलाब। फिरौन डूब गया, जो तख्त पे था वो पानी की मौजों में गिर गया और अल्लाह ने दबी पिसी बनी इसराइल को इज्जत दे दी। आज भी यही है, कल भी वही था और आगे भी यही होगा। फिर आगे एक और नबी का तذکرہ, हमने इब्ने मरियम और इसकी वालिदा को एक निशानी बनाया और इन दोनों को बुलंद साफ करार वाली और जारी पानी वाली जगह में बना दी। हजरत ईसा जहाँ पैदा हुए थे बैतुल्लाह, हम उसकी तरफ इशारा है। तो इस रुकू में आपको तीन आयात दिखी ईमान से मुतल्लिक, 38 मोमिनून, इसका टॉपिक लिखिए दुनिया की बजाय आखिरत की फिक्र कीजिए, मोमिनून 44, ईमान की पुकार को झुटलाने वाले भुला दिए जाते हैं। अल्लाह कहते हैं हमने उनको बातें बना दिया, अहादीस, गई गुजरी, किस्से, किस्से पारी ना। आज जितने झुटला रहे हैं, जो सरकश बने बैठे हैं ना, अगले दौर में इसका कोई नाम नहीं लेगा। आज कोई फिरौन का नाम लेता, नमरूद का लेता, शद्दाद अबू जहल का लेता, इनके भी खत्म हो जाएंगे, ये अपने कैफरे किरदार को पहुंच जाएंगे। फिर 47 मोमिनून में तकबुर हिदायत के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है और तकबुर हम अपना भी पहचाने। जब अल्लाह का हुक्म आ जुरा है कोई कि मानो, तो कितना को मानते हैं? अभी सूरत नूर पढ़ते ही आपको अंदाजा हो जाएगा। फिर फेथ इन एक्शन क्या है? कि दीन का इल्म हासिल करते हुए दिल को तकबुर और बड़ाई से पाक करना है। मैं भी और आप भी इस पे गौर करें। आगे रुकू नंबर 4, 51 से 77, हलाल और हराम खाने के असरात, ये भी नोट कीजिएगा। हया है ना इस बारे में, हया का सबसे बड़ा दुश्मन हराम होता है। आइए देखते हैं। या अय्युहर रुसुल कुलू मिनत तय्यिबाति वामलू सालिहा, ए पैगम्बरो हलाल चीजें खाओ और नेक अमल करो, तुम जो कुछ कर रहे हो इससे मैं बखूबी वाकिफ हूँ। यकीनन तुम्हारा ये दीन एक ही दीन है और मैं ही तुम सब का रब हूँ, बस तुम मुझसे डरते रहो। फिर उन्होंने खुद ही अपने अमर यानी दीन के आपस में टुकड़े टुकड़े कर लिए। हर गिरोह जो कुछ उसके पास है वो इस पर इतरा रहा है। बस आप भी इन्हें इनकी गफलत में ही कुछ अरसा पड़ा रहने दीजिए। क्या ये यूं समझ बैठे हैं कि हम जो भी इनके माल और औलाद बढ़ा रहे हैं वो इनके लिए भलाइयों में जल्दी कर रहे हैं? नहीं नहीं, बल्कि ये समझते ही नहीं, यानी गुनाहों के साथ किसी को फ्लरिश होता देखें, दुनिया में फलता फूलता देखें, तो इस आयत को याद कर लीजिएगा। यकीनन जो लोग अपने रब की हैबत से डरते हैं, अल्लाह हमें अपना खौफ दे दे, और जो लोग अपने रब की आयतों पर ईमान रखते हैं, और जो अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं करते, और जो लोग देते भी हैं वो कुछ जो देते हैं, और इनके दिल कप कपाते हैं कि वो अपने रब की तरफ लौटने वाले हैं, ये नोट कर लीजिए। नेकियां करके वो इतना डरते थे जितना हम गुनाह करके नहीं डरते। यही है जो जल्दी जल्दी भलाइयां हासिल कर रहे हैं और यही है जो इनकी तरफ दौड़ कर जाने वाले हैं। जिसको आगे जाना होता है ना, वो वक्त से पहले तैयार होता है। मुकाबला ये ध्यान में रखिए, वो एक सेकंड जाया नहीं करता। अल्लाह हमें जन्नत में जाने का इतना शौक लगा दे कि हम पहले से तैयार होके बैठे हों। और बात यह है कि हम किसी नफ्स को इसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देते। मुझे लगता है ये हर उसके दिल के अंदर जो जवाब आया, यानी सुनने वालों में पिछली आयत को सुनकर जो ख्याल आया कि मेरी कहाँ औकात है, मैं तो बूढ़ी हो गई, हाय मेरे पास तो ये नहीं है वो नहीं है, तो अल्लाह कहते जो कर सकते हो वो करो। पिछली जिंदगी की जहालत का रोना क्या रोना, आज से शुरू कर दीजिए, ये पैगाम है इसका। और हमारे पास ऐसी किताब है जो हक के साथ बोलती है, और इनके ऊपर कुछ भी जुल्म ना किया जाएगा। शैतान का एक ये बहुत बड़ा धोखा, नहीं नहीं तुमसे नहीं होना, तुम नहीं कर सकती। कितने लोग हैं जो सबीलुल जन्ना की ख्वाहिश दिल में पाल चुके हैं, लेकिन शैतान उनको थपक के सुलाता है, नहीं तुमसे नहीं होगा। किसी के बच्चे छोटे हैं, किसी के बड़े हैं, किसी के ये हैं, किसी के वो। तो अल्लाह कहते हैं ये किताब है जो तुम्हें सिखाएगी, और ये किताब कल तुम्हारा नामे माल बन जाएगी, और वो कल सबके सामने बोले कि ठीक है जाओ फिर ऐसे ही जाओ दुनिया से, ये मौके तो तुम्हें जन्नत में भी जाके नहीं मिलने कि अल्लाह का कलाम सीखो। तो इस दुनिया को जन्नत बनाने का नुस्खा कुरान को सीखे। इसी ठंडी छाँव में आपके सारे दुख आपको ठंडा रखेंगे और आपकी खुशियां आपको काबू में रखेंगी इंशाल्लाह। लेकिन अक्सर लोगों का हाल क्या है, बल्कि इनके दिल इसकी तरफ से गफलत में हैं। सच है कि झूठ? आज लोग गाफिल हैं तो इससे, नमाजें पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, गाफिल हैं तो इस कुरान से गाफिल हैं। और इनके लिए इसके सिवा भी बहुत से अमाल हैं जिन्हें वो करने वाले हैं। कारे जहां दराज है, अब मेरा इंतजार कर, वक्त नहीं मिला जिंदगी भर तो वक्त देने वाले के लिए ना मिला, और चले गए दुनिया से। कहते हैं वक्त ही नहीं मिलता, वो तो नहीं मिलना, तौफीक नहीं मिली वो तो नहीं मिलनी, इरादे नहीं, कोशिशें नहीं, खाली ख्वाहिशों से तो बात नहीं बनती। तो दिल की गहराई से अल्लाह से मांगिए कि अल्लाह मुझे मरने से पहले फातिहा से नाश्ता कुरान समझ आ जाए। यहाँ तक कि जब हमने इनके आसूदा हाल लोगों को अजाब में पकड़ लिया तो वो बिल बिलाने लगे। फील करिए जरा इसको, आज मत बिल बिलाओ, यकीनन तुम हमारे मुकाबले पर मदद ना किए जाओगे, क्या फायदा। वो कहते ना पछताए क्या होत जब चिड़ियां चुग गई खेत। मेरी आयतें तो तुम्हारे सामने पढ़ी जाती थी, फिर भी तुम अपनी एड़ियों के बल उल्टे भागते थे, अकड़ते थे, ऐंठते, हुए अफसाना कोई करते इसे छोड़ देते थे। यानी इतनी लंबी जुबान थी तुम्हारी, कोई एक बात कहकर जाए किधर, तुम तो उसके ऊपर एक लंबी तकरीर शुरू करते, अपनी मजबूरियों की एक फहरिस्त तैयार रखते थे। तो जरा सोचो क्या उन्होंने इस बात में गौर ही नहीं किया, बल्कि इनके पास वो आया जो इनके अगले बाप दादाओं के पास नहीं आया था, या उन्होंने अपने पैगंबर को पहचाना ही नहीं कि इसके मुनकिर हो रहे हैं, या ये कहते हैं कि इसे जुनून है, बल्कि वो तो इसके पास हक लाया है। हाँ इनमें से अक्सर हक से ही चिढ़ने वाले हैं, ये है अंदर का रास, चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर हक ही इनकी ख्वाहिशों का पैरो हो जाए तो जमीन आसमान और इनके दरमियान की हर चीज दरहम बरहम हो जाए। हक तो ये है कि हमने इन्हें इनकी नसीहत पहुंचा दी है, लेकिन वो अपनी नसीहत से मुंह मोड़ने वाले हैं। देखिए सिर्फ आप अपने घर में अपने बच्चे की हर बात मानने लग जाए ना, तो आपके घर का निजाम देखिए कैसे होगा। फिर आपके घर ना भिंडियां पकेंगी, ना दाल पकेगी, ना कद्दू पकेगा, बच्चे रोज बाहर से खाना मंगाएंगे। फिर आपका घर एक अस्तबल बना होगा, क्योंकि उनको सफाई नहीं करनी, क्योंकि बच्चे तो नफ्स के तकाजों पर चलते हैं। अगर दुनिया में हक लोगों की बात मान ले तो वो ना हक बन जाए। लोग कहते हैं सूद निकाल दें, फिर हम कुरान पे अमल करने को तैयार हैं। ये पर्दे वर्दे हमसे नहीं होते, पर्दा तो अकल पे पड़ा हुआ है, पर्दा तो वो, ये तो वो, शरीयत का पट्टा है हमारे गले में, हमें दुपट्टे की क्या जरूरत। अल्लाह उस बंदे को भी माफ कर दे दुनिया से चला गया जिसके मुंह से एक जुमला निकला था ये, कि जिनकी गर्दनों में शरीयत के पट्टे हैं उनको दुपट्टों की क्या जरूरत। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला, तुमने शरीयत का हया और अदल वाला तकाजा देखा ही नहीं। इज्जत और नसब की हिफाजत तुम्हें पता ही नहीं है शरीयत क्या देती है। मैं सोचती हूँ कि हम इतना दर्द रखते हैं, अल्लाह तआला का क्या होगा। वह सबूर ना होता ना तो इंसानियत के इस हाल पर न कदरी और न शुक्री पे पटक के मारता के जाओ भाड़ में। मैं क्यामत वक्त से पहले ला रहा हूँ, लेकिन उसकी हर चीज मुकर्रर है। अल्लाह का हौसला अल्लाह में दे दे, अल्लाह के नामों पे गौर करें ना तो आपको थोड़ा सा सुकून आता है कि जब अल्लाह तू इतना कुछ कर सकता है, तू ठंडा है, तो हम इतने गर्म क्यों हो। चलिए एक और इल्जाम बड़ा होता है दीन वालों पे, उसका भी जवाब ले लीजिए। क्या आप इनसे कोई उजरत चाहते हैं? याद रखिए आपके रब की उजरत बहुत ही बेहतर है, और वो सबसे बेहतर रोजी रसा है। यकीनन आप इन्हें राह रास की तरफ बुला रहे हैं। तानों पे ताने, इल्जाम पे इल्जाम, कहते नहीं कोई अपना फायदा होगा, ये अंदर में कुछ खाता है, ये जरा कुछ चक्कर है, ये क्या है, ये गाड़ियां कहाँ से आती हैं, घर कहाँ से बनते हैं, ये क्या होता है, ये टिकट कौन पे करता है, ये फलां कहाँ से आते हैं। भाई तुम्हारा दिमाग इन्हीं चीजों में रहता है, तुम इतनी छोटी चीजों को सोचते हो, कभी तुमने देखा कि आउटपुट क्या है, तुम इनपुट पे लगे रहते हो। नबियों के ऊपर लोगों को सबसे बड़ी हैरत ये होती थी कि बगैर पे के काम कैसे करते हैं, 24/7 कैसे करते हैं, वीकेंड एंड वीकडेज पे कैसे करते हैं, सुबह को भी करते हैं, शाम को भी करते हैं, क्योंकि दुनिया में तो 40 आवर्स का पे स्केल चलता है, मिनिमम वेजेस इतने डॉलर पर आवर। और वो करके तो देखिए जरा, आप जिधर जितने खतरों में और फितनों में अपने आप को डालते हैं, वो घड़ी पहले देख रहे होते हैं, वो कैसे वक्त ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि उनको तो पैसे मिलने हैं किसी और जगह जाकर उस बाकी वक्त के, जो इधर फालतू आपको दे रहे हैं। कभी आप कुछ लोगों को देखते हैं ना, वो हर जगह हर वक्त है, मान लिया करें वो पेड़ नहीं है, क्योंकि दुनिया का कोई इंस्टीट्यूट ऐसे लोगों को पेड़ नहीं कर सकता जो रातों में, दिन में, सोते में, जागते में एक ही गम है कि हमारा कुछ सदका जारिया बन जाए। और ये जील मिलती है कुरान पढ़ के, और सारी टीम जो रात के सेशन में मेरे साथ है, अल्लाह उनके दर्जे बुलंद करे, आधी रात को जागते हैं। मैं तो नहीं जगाती, वो अभी एक को जुकाम दिया तो चार नाराज भी है मुझसे, अल्लाह जानता। किसी एक की एक चीज आगे कर देती है तो तीन बेचारे बुझ जाते हैं कि अच्छा फिर हमारी कोशिश कबूल नहीं हुई, हमारा लिखा अच्छा नहीं लगा। ये जो आप पढ़ रहे हैं लिखा हुआ, कितनों ने लिखा, कितनों ने छांटा, कितनों ने यहाँ पुचाया, तो वो सारे खुश होंगे जिनके लिखे लफ्ज कट गए, लेकिन कुरान है जिससे उनको जोड़ा हुआ है। कोई बात नहीं, हमारा अल्लाह के यहाँ तो लिखा जाता है ना, इधर नहीं भी वो लिखा गया पढ़ा गया तो लिखा जाता है। क्यों खाली जगह दिखती है हमें? क्योंकि आप रखिए पैसे 1 घंटे का, $100, आइए इस कोर्स में बैठिए और आपको $100 पर आवर मिलेगा। ये फिर ये नहीं, वो शहर का इससे भी बड़ा कोई हॉल लेना पड़ेगा, खाना मिलेगा। हमारी एक साथी वो कहती मैं खाना खाने आई थी आपके पहले दर्स में, सच बोल रही है ना, सहेली ने बुलाया उधर चले, हमारी साझा ही कहती क्या खाना मिलेगा, उसने कहा खाना मिलेगा, कहती मैं खाना खाने आई थी पर गई नहीं, आज तक इधर है। तुम्हें क्या पता इसमें क्या मिलता है, ये तो छुपाया होता है दीनदारों ने, ये नहीं पता, वो नहीं बताते, वो बड़े समझदार हैं, क्योंकि अगर तुम्हें वो पता चल गया तो तुम वो लेने के लिए एड़ियों के बल होगे, रातों को जागोगे, रात जाग कर आप इतने रिलैक्स्ड और इतने ज्यादा खुश नहीं दिखते जितना सारी रात बिस्तर तोड़ने वाले या वो लघवियात में जिंदगी गुजारने वाले होते हैं। उनका तो सारा जिस्म सुबह सोया होता है, वो तो सारी रात कहते हैं हाय नींद नहीं पड़ी आज। भाई रात आप सोए कब थे, ड्रामा कब बंद किया था, फिल्म कब छोड़ी थी, और वो शादी में से आप कितने वक्त में आई थी। ये दुनिया थकाती है और ये दुनिया आपको लेती है। मैं अक्सर कहती हूँ जिस वक्त पारा खत्म होता है ना, मेरे पास एक नई खेप रख दें, नई टीम ले आए, नए सुनने वाले और नए सुनाने वाले, आप सब जाएं। मैं सबसे ज्यादा एनर्जेटिक उस वक्त होती हूँ जब ये पारा आगे चल रहा होता है, उस वक्त तो मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा होता कि आप जाएं, लेकिन कमिटमेंट इज कमिटमेंट। तो यही बात अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये नबियों पे इतने शक करने वाले, इनको को जरा तुम भी आके चख लो, तुम एक दो चख लो, तुम्हें भी वो बात समझ आएगी, ये कोई किसी की मिराज नहीं है, अल्लाह हजारों लाखों में से चंद को चुनता है, क्योंकि अल्लाह ने पिछली सूरत में आपको कह दिया कि तुम चुने हुए लोग हो। बेशक जो लोग आखिरत पर यकीन नहीं रखते वो सीधे रास्ते से मुड़ जाने वाले हैं, इस पर रोइए। कुरान पढ़ के दुनिया की तरफ चले गए, कुरान पढ़ के फिक्शन की तरफ चले गए, दीन पढ़ के दुनिया की तरफ चले गए, दीन की दौलत लेते लेते दुनिया की दौलत कमाने पर चले गए। अच्छे भले कुरान पढ़ के हमारे दिल दिमाग धुल जाते हैं, थोड़े अरसे बाद दोबारा उस पर गंदी चीजें लिखी जाने लगती हैं, हमारी नजरें पाक हो जाती हैं, फिर नजरें गंदी, कान पाक, हाथ पाक, जुबान पाक। एक कुरान का कोर्स हमें तोड़ के रखता है, हम रोज आते हैं, रोज बैठते हैं, फिर भी कहते हैं और आएंगे। एक दफा ना छोड़ दीजिए, वीकेंड पे भी नहीं दुनिया ने देती है आपको, निचोड़ती है दुनिया आपको, स्क्वीज करती है आपके अंदर, एक रत बराबर नहीं रहती, फिर कहाँ आप आए। और वो बेचारे सच्चे हैं, क्योंकि एक जिहाद अल्लाह के रस्ते के और एक दुनिया के, एक मुजाहिद फी सबीलिल्लाह और एक मुजाहिद फी दुनिया। मत उनको ज्यादा फोर्स किया करें, चिढ़ जाएंगे आपसे, क्योंकि उनको भी बड़े काम है। अगर आपको बड़े काम है, आपको दीन अगर कुछ दे रहा है, तो उनको दुनिया बहुत कुछ दे रही है, बस दुआ किया करें। और अगर हम इन पर रहम फरमाएं और इनकी तकलीफें दूर करते हैं, तो ये तो अपनी अपनी सरकशी पर जमकर और बहकने लगे, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिन्हुम, और हमने इन्हें अजाब में भी पकड़ा, ताहम ये लोग ना तो अपने परवरदिगार के सामने झुके और ना ही आजी की, बच्चों की फौतिदगी हो गई, घर टूट गए, बेटियां बेचारी दुखी हो गई। ये देखिए आयत क्या कह रही है आपको, अल्लाह कभी दुनिया में कोई तकलीफ डालता है कि चलो अब तो बन जाए, अब तो आएगी ना। देखिए ना, डॉक्टर के पास बंदा कब जाता है, जब बीमार होता है, लॉयर के पास कब जाता है, जब कोई मुकदमा पड़ता है। अल्लाह कई दफा हमें देखने के लिए कि आते हो मेरे पास कि नहीं, तुम फजर पे नहीं गए, खैर मिन नौम पे नहीं उठे, अच्छा तुम्हारा रुख मस्जिद की तरफ नहीं गया, कुरान की तरफ नहीं गया, लो मैं तुम पे एक दुख डालता हूँ। दुख एक संदेश है, मैसेंजर है को दुख, तकलीफ, परेशानी, कि देखना मैं नहीं ना, फरिश्ता आएगा मेरे सामने, लेकिन तुम फिर भी नहीं आते। इसको तोड़ो, वो जिसको सॉफ्टनर नहीं कहते, टेंडर, ये कुरान, ये मुसीबतें, जो तकलीफें और खुशियां भी, ये टेंडर्स होते हैं। कोई खुशी में टूटता है, कोई गम में टूटता है, और कोई कुरान से टूटता है। तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह अजाबों से तोड़ दें की बजाय कुरान से तोड़ दें। मैं जब इसी में गल रही हूँ तो मुझे प्रेशर कुकर में डाल के तूने क्यों गलाना है? फिर इतनी बड़ी तकलीफ आती है। लेकिन देखिए, जो नहीं गलते वो नहीं गलते, कुछ रोड़ होते हैं, काले चने भी गल जाते हैं लेकिन वो नहीं गलते, वो आजिज़ी नहीं करते। यहाँ तक कि जब हमने इन पर सख्त अजाब का दरवाजा खोल दिया तो वो इस वक्त फौरन मायूस हो गए। अल्लाह को बुलाना आता है, बंदा आए ना आए। तो क्या पता चला, दो आयात ईमान से मुतल्लिक, मोमिनून 58, बंदा है मोमिन तस्लीम और रजा का पैकर होता है, खुशी और गम उसके लिए बराबर होते हैं क्योंकि दोनों रब के तोहफे हैं। और मोमिनून 74, दुनिया का जादू बंदे को रब से जुदा कर देता है। ये जुमला आपको आधा दिया मैंने, खाली मेरा गुमान है कि सुफियान सॉरी, जो एक बहुत बड़े मुहदिस थे, उन्होंने हारूत मारूत के बारे में जो बात की तो उन्होंने कहा दुनिया का जादू हारूत मारूत के जादू से ज्यादा बड़ा है। याद आ गया किस्सा दूसरे बारे में? क्योंकि हारूत मारूत का जादू शौहर को बीवी से दूर करता था, और दुनिया तो बंदे को रब से दूर कर देती है। दुनिया में दुनिया देने वाले को भूल जाते हैं, आज नहीं भूले हुए। एलेबोरेटेड दुनिया, बड़ी चढ़ी दुनिया हमें नमाजों से ही रोक लेती है। तो फेथ इन एक्शन, नेकियां करने के बाद इनकी कबूलियत की दुआ करनी है। हराम हलाल कमाई और हलाल खाने से अपनी जिंदगियों को पाकीज़ा रखना है। ख्वाहिशात की पैरवी में अल्लाह की नाफरमानी नहीं करनी। और रुकू नंबर 5, 78 से 92, अल्लाह ताला के कुछ एहसानात हैं हमारे ऊपर तवज्जो दिलवाने वाले। वहुवल्लज़ी अंशअ लकुम अस्समअ वल अबसार वल अफ़ईदा, वो अल्लाह है जिसने तुम्हारे लिए कान और आंखें और दिल पैदा किए, मगर तुम बहुत ही कम शुक्र करते हो। और वही है जिसने तुम्हें पैदा करके जमीन में फैला दिया और उसी की तरफ तुम जमा किए जाओगे। और वही है जो जिंदा करता है और मारता है, और रात दिन के रद्दो बदल का मुख्तार भी वही है। क्या तुमको समझ बूझ नहीं? बल्कि इन लोगों ने भी वैसी ही बात कही जो अगले कहते चले आए कि क्या जब हम मरकर मट्टी और हड्डी हो जाएंगे, क्या फिर भी हम जरूर उठाए जाएंगे? हमसे और हमारे बाप दादाओं से पहले ही ये वादा होता चला आया, और कुछ नहीं, ये तो अगले लोगों के अफसाने हैं। यानी कुछ नहीं होना, ऐम ही डराते रहते हैं बस। ये मौलवियों का काम ही है, ये खुश नहीं देखना चाहते। लिव एंड लेट टू लिव, छोड़ो जी और जीने दो, मस्ती करो, ये अंदाज था उनका। पूछिए तो सही कि जमीन और इसकी कुल चीजें किसकी हैं, बतलाओ अगर जानते हो। फौरन जवाब देंगे कि अल्लाह की। कह दीजिए कि फिर तुम नसीहत क्यों नहीं हासिल करते? पूछिए कि सातों आसमानों का और बहुत बाजमत अर्श का रब कौन है? वो लोग जवाब देंगे कि अल्लाह ही है। कह दीजिए कि फिर तुम क्यों नहीं डरते? पूछिए कि तमाम चीजों का इख्तियार किसके हाथ में है, जो पनाह देता है और जिसके मुकाबले में कोई पनाह नहीं दिया जाता? अगर तुम जानते हो तो बतलाओ। यही जवाब देंगे कि अल्लाह ही है। कह दीजिए फिर तुम किधर से जादू कर दिए जाते हो? हक ये है कि हमने इन्हें हक पहुंचा दिया। इतना प्यारा जुमला। और ये बेशक झूठे हैं, ना तो अल्लाह ने किसी को बेटा बनाया और ना इसके साथ कोई और माबूद है, वरना हर माबूद अपनी मखलूक को लिए लिए फिरता और हर एक दूसरे पर चढ़ दौड़ता। जो औसाफ ये बतलाते हैं इनसे अल्लाह पाक है और बेनियाज है, वो गैब और हाजिर का जानने वाला है, और जो शिर्क ये करते हैं इससे बालातर है। क्या पता चला कि अल्लाह की दी हुई नेमतों को अल्लाह की राह में लगाकर इनका हक अदा करना है। वो शेर है ना, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। अल्लाह करे कि हम अल्लाह का हक अदा करने वाले बन जाए। और अल्लाह कादिर मुतलिक है, उसकी कुदरत को पहचानना, और बंदा आजिज़े मुतलिक है, उसके इज्ज़ को पहचानना। सूरत कैंड की तरफ हम जा रहे हैं, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग रुकू है, यानी सिर्फ तर्जमे से ही आपकी आंखें भीग जाती हैं। और बंदा अपने लिए दुआ करने लग जाता है कि अल्लाह मुझे बुरे अंजाम से बचाना। तो क्या है 93 से 118, ईमान अफरोज दुआएं। और रब्बी मातुरी यन्नी मा युआदून, आप दुआ कीजिए कि मेरे परवरदिगार, अगर तू मुझे वो दिखाए जिसका वादा इन्हें दिया जा रहा है, तो ऐ रब तू मुझे इन जालिमों के गिरोह में ना करना। आप भी दुआ कर लीजिए, बहुत ही असीर बल्कि अक्सीर दुआ होगी आज के हालात में। रब्बी फला तजअलनी फिल कौमिल जालिमीन, आमीन। हम जो वादे इन्हें दे रहे हैं सब आपको दिखा देने पर यकीनन कादिर हैं। बुराई को इस तरीके से दूर करें जो सरासर भलाई वाला हो। जो कुछ ये बयान करते हैं हम बखूबी वाकिफ हैं, और दुआ करें कि मेरे परवरदिगार, मैं शैतानों के वसवसों से तेरी पनाह चाहता हूँ, हम भी चाहते हैं, और अब मेरे रब, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कि वो मेरे पास आ जाए। ये दुआएं जुबान पे रखें। हमारा अपना नफ्स ही बहुत बड़ा शर है, किसी दूसरे को तो हम क्या कहेंगे। तो दुआ क्या है, रब्बी आउज़ु बिका मिन हमज़ाति शयातीन वाउज़ु बिका रब्बी अन यहदुरून, आमीन। यहाँ तक कि जब इनमें से किसी को मौत आने लगती है तो वो कहता है, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे वापस लौटा दे कि अपनी छोड़ी हुई दुनिया में जाकर नेक आमाल कर लूँ। हरगिज़ ऐसा नहीं होता, ये तो सिर्फ एक कॉल है जिसका ये कहने वाला है। इनके पसे पुश्त तो एक हिजाब है, यानी बरजख, मौत से हशर तक का वक्त, इनके दोबारा जी उठने के दिन तक, बस जब के सूर फूक दिया जाएगा। इस दिन ना तो आपस के रिश्ते ही रहेंगे, ना आपस की पूछगिछ रहेगी। अब जरा सा अपने आप को लीजिए, और अल्लाह करे आपके साथ ऐसा ही हो। जिनकी तराजू का पल्ला भारी हो गया वो तो निजात वाले होंगे। दुआ तो कीजिए, अल्लाह हमारे अमाल नामों में नेकियां ज्यादा कर दे, अब जो जिंदगी रह गई है उसको नेकियों में लगवा ले। और जिनके तराजू का पल्ला हल्का हो गया, ये हैं वो जिन्होंने अपना नुकसान आप कर लिया, जो हमेशा के लिए जहन्नुम वासिल हुए, इनके चेहरों को आग झुलसती रहेगी और वो वहां बदशकल बने हुए होंगे। क्या कहा जाएगा, क्या मेरी आयतें तुम्हारे सामने तिलावत नहीं की जाती थी, फिर भी तुम इन्हें झुटलाते थे। अब जवाब सुनिए, ये एक मुकालमा है जो ऐसे शख्स की मौत के वक्त पेश आ रहा है जिसने जिंदगी में अल्लाह की किताब की कदर ना की। कहेंगे कि ऐ परवरदिगार, हमारी बदबख्ती हम पर गालिब आ गई, गलबत अलैना शिकवतना, हम तो बड़े ही बैड लक थे, ये अंदाज है, वाकई हम थे ही गुमराह, जिंदगी में थे दूसरों को गुमराह करने वाले, और खुद के मौत पे कह रहे हैं हम खुद ही भटके हुए थे। ऐ हमारे परवरदिगार, हमें यहाँ से निजात दे, अगर अब भी हम ऐसा ही करें तो बेशक हम जालिम हैं। अल्लाह ताला फरमाएगा, फटकारे हुए यहीं पड़े रहो और मुझसे कलाम ना करो, डोंट टॉक टू मी, ला यतकल्लम। किसी से नाराजगी की इंतहा ये होती है कि मैंने बात ही नहीं करनी। माँ भी बच्चे को समझाती है, गुस्सा करती, डांटती, लेकिन जब ज्यादा गुस्से में होती है तो कहती है मेरे से बात ना करना, बात नहीं कर। मियाँ भी बात करें, गुस्सा करें, जो भी करें, और जब वो चुप कर दें तो आप समझ जाते हैं कि अब ये कुछ खतरनाक मोड़ है, क्योंकि हर खामोशी के पीछे एक तूफान होता है। अब इनका जुर्म सुनिए, कोई मेरे एक लफ्ज कहने की बात नहीं है कि ये किन लोगों की बातें हो रही हैं। फरमाया, मेरे बंदों की एक जमात थी जो बराबर यही कहती रही कि हमारे परवरदिगार, हम ईमान ला चुके हैं, तू हमें बख्श और हम पर रहम फरमा, तू सब मेहरबानों से ज्यादा मेहरबान है। देखिएगा जरा दुआ, रब्बना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना वरहमना वअंत ख़ैरुर राहिमीन। अल्लाह आज हमारी ये दुआ सुन ले, सब साथी जो इस वक्त तुम्हारे साथ हैं, जो बाद में भी सुनेंगे, अल्लाह ताला उनको ये दुआ लगा दे कि हम पर अल्लाह रहम भी कर दे, मेहरबानियां फरमा दे। अब मुराद ये के गिरोह था जो तुम्हें हमेशा खैर की दावत देता था, लेकिन तुम क्या करते थे रिस्पॉन्स में, लेकिन तुम इन्हें मजाक में ही उड़ाते रहे, यहाँ तक कि इस मशगले ने तुमको मेरी याद भी भुला दी और तुम इनसे मजाक ही करते रहे। यानी वो अल्लाह की तरफ, किताब की तरफ बुलाते थे और तुमने ये समझा भी नहीं कि तुम किसका इनकार कर रहे हो, उनका या मेरी किताब का या मेरा। मैंने आज इन्हें इनके इस सब्र का बदला दे दिया कि वो खातिर ख्वाह अपनी मुराद को पहुंच चुके हैं। अल्लाह ताला दरियाफ़ फरमाएगा कि तुम जमीन में बाएतबारे बरसों के, यानी सालों के हिसाब की गिनती के किस कदर है, यानी हाउ लॉन्ग यू वाज इन दिस वर्ल्ड। वो कहेंगे एक दिन या उस दिन से भी कम, यू लिव वंस। ये जुमला यहाँ लाके सोचिए क्या लग रहा है, वाकई तुम्हें वहां मौत के बाद यही लगना है कि इस दुनिया की जिंदगी फ्यू आवर्स थे। गिनती गिनने वालों से भी पूछ लीजिए, अल्लाह ताला फरमाएगा फिल वाके तुम वहां बहुत ही कम रहे हो, ऐ काश तुम इसे पहले ही से जान लेते। कभी दुनिया की हकीकत समझ आ जाए ना, तो बंदा ना खत्म होने वाली आखरत को कभी पीछे डालकर सिर्फ इस दुनिया के गमों में ना खो जाए। अब ये है वो आयत 115 जो आप जुबानी याद कर लें, अफहसिब तुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा वअन्नकुम इलैना ला तुरजौन। दो सवाल हैं आपके मालिक के आपसे, क्या तुम ये गुमान किए हुए हो कि हमने तुम्हें यूं ही बेकार पैदा किया है। पहला सवाल, व्हाट इज योर पर्पस ऑफ लाइफ, तुम्हारा मकसद हयात क्या है। और दूसरा ये कि तुम हमारी तरफ लौटाए ही ना जाओगे। कब तक? 100 दिन चोर के, एक दिन शाह का। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? खुले फिरो, मौजें करो, अल्लाह ने संगलियों में डाल के तुम्हें फिर बांधना, और ऐसा बांधना कि बोला यूसी को साका हुआ हद। सूरह फजर में आता है आगे 30वें पारे में। तुमने सारी जिंदगी एक हकीकत ना समझी, और वो क्या? अल्लाह ताला सच्चा बादशाह है, वो बड़ी बुलंदी वाला है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो ही बुजुर्ग अर्श का मालिक है। जो शख्स अल्लाह के साथ किसी दूसरे को माबूद पुकारे, जिसकी कोई दलील इसके पास नहीं, बस इसका हिसाब तो इसके रब के ऊपर ही है, बेशक काफिर लोग निजात से महरूम हैं। और कहो कि मेरे रब, तू बख्श और रहम कर, और तू सब मेहरबानों से बेहतर मेहरबानी करने वाला है। वकुर रब फिर वरहम वअंत खैरुर राहिमीन। क्या सूरत थी! एक दफा इस रुकू में ईमान वालों को पुकार आई। 109 है ईमान से मुतल्लिक। लिखिए दुआ कबूल हो जाए तो भी इस्तग़फार करनी है कि कहीं ये नेमत छिन ना जाए। कभी दुआ कबूल हो ना तो ये ना कहा करे कुछ और मांग लेती, ये भी ना शुक्रिया, ये कहा करें कि अल्लाह ये दुआओं की कबूलियत की नेमत मेरे लिए हमेशा के लिए कर दे, मुझे मुस्तजाबुद दावत बना दे। फेथ इन एक्शन क्या है कि कसरत इस्तग़फार को अपना मामूल बनाना, कल की हसरत से बचने के लिए आज ज्यादा से ज्यादा नेकियां करनी है, अपने वक्त को फजूल कामों में जाया नहीं करना। सूरत का आगाज क्या था? कद अफलहल मोमिनून। और आखिरी लफ्ज क्या है? इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून। फर्क साफ जाहिर है, मोमिन बन के जियेंगे तो फलाह, कामयाबी, इटर्नल ब्लेस आपका रास्ता देखेगी, और अगर निनकारी ना शुक्रे बनते हैं तो इंजाम हमने आखिरी रुकू में देख लिया। अल्लाह ताला आपसे मुझसे राजी हो जाए।